अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक में फिर फूल आ गए हैं। इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के अष्टभुजों में कैसा मोहक भाव है। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ पांच को ही अपने तुरी में स्थान देने योग्य समझा था। यह एक वह अशोक ही था। लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि उतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे, कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सका हूँ, उसे बताता हूँ। भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकेगा कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है, पहले वह कहाँ था। उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारना है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प इतिहास साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का। अशोक को जो लोग सम्मान कालिदास में मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आसिज्जनकारी नूपुर वाले चरणों के मृदु आवाज से वह फूलता था। कोमल कपोलों पर कर्णावटस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा की सौगुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के मन में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारा पर अंधे पर कंधे सर पर फूट पड़ता था। अशोक किसी कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है। क्यों ऐसा हुआ? कंदर्प देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों का त्यों है। अरविंद को किसने भुलाया, आम कहाँ छोड़ा गया और नीलोत्पल की माया को कौन काट सका। नवमल्लिका की अवश्य ही अब विशेष पूछ नहीं है, किंतु उसकी इससे अधिक कदर कभी थी भी नहीं। भुलाया गया अशोक को, मेरा मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना के पहले हजार वर्षों पर बरबस जाना चाहता है। क्या मनोहर पुष्प भुलाने की चीज है? सौहृदयता क्या लुप्त हो गई थी? कविता क्या खो गई थी? ना मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं है। जले पर नमक तो यह भी कि एक तरंगायित पत्रवाले निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। याद भी किया तो अपमान करके, लेकिन मेरे मानने न मानने से क्या होता है। ईस्वी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। उसी प्रकार शताब्दियों के परिचित यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया है कि गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण है। कंदर्प देवता ने यदि अशोक को चुना तो यह निश्चय रूप से एक आर्येतर सभ्यता की देन है। इन आर्येतर जातियों के उपास्य वरुण थे, कुलेर थे, वज्रपाती यक्षपति थे। कंदर्प यद्यपि काम देवता का नाम हो गया है, तथापि वह गंधर्व का पर्याय है। शिव से भिड़ने जाकर यह एक बार पिट चुके हैं, विष्णु से भी डरते रहते हैं और बुद्धदेव से भी टक्कर लेकर लौट आए थे। लेकिन कंदर्प देवता हार मानने वाले जीव न थे, बार बार हारने पर भी झुके नहीं, नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते रहे। अशोक शायद अंतिम अस्त्र था। बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया, शैव मार्ग को अभिभूत कर दिया और शक्ति साधना को झुका दिया। वज्रयान इसका सबूत है, कौल साधना इसका प्रमाण है और कपालिक मत इसका गवाह है। रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है यह। असुर आए, आर्य आए, शक आए, हुन आए, नाग आए, यक्ष आए और गंधर्व आए। ना जाने कितनी जातियां आई और आज के भारतवर्ष के बनाने में अपना हाथ लगा गई। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वह अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी, ना जाने कितनी स्मृतियों का सार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है। सब क्या हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है? न जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव पर बांध फेंका था, शरीर जलकर राख हो गया और वामन पुराण खष्ट अध्याय की गवाही पर हमें मालूम है कि उसका रत्नमय धनुष टूक टूक होकर खंड खंड धरती पर गिर गया। जहां मूठ थी वह स्थान रुक्मणी से बना था, वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। हीरे का बना हुआ जो नाभि स्थान था वह टूटकर गिरा और मौलश्री के मनोहर पुष्पों में बदल गया। अच्छा ही हुआ इंद्रनील मनियों का बना हुआ कोटिदेश भी टूट गया और सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया, यह भी बुरा नहीं हुआ। लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्यदेश टूटकर चमेली बन गया और विद्रुम की बनी निम्न कोटि बेला बन गई। स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल फलों में बदल गया। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा हूँ, इस कथन का क्या रहस्य है? यह क्या पुराणाकार की कोमल कल्पना है या वे फूल भारतीय संसार में सचमुच गंधर्वों की देन है? एक निश्चित काल से पूर्व इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में नहीं मिलती है। सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता था, ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में यह विधान सुरक्षित रह गया है, ये फूल क्या उन्हीं से मिले? कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो जाती है। कुबेर, सोम, अप्सराएं यद्यपि बाद में ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत है, तथापि पुराने साहित्य में ये अपदेवता के रूप में ही मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में तो बुद्धदेव को ये कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती है जिनमें संतानार्थिनी स्त्रियां वृक्षों के अपदेवता यक्षों के पास संतानार्थिनी के लिए जाया करती थी। यक्ष और यक्षिणी साधारणतः विलासी और उर्वरताजनक देवता समझे जाते थे। कुबेर तो यक्षनिधि के अधीश्वर भी है। यक्षमा नामक रोग के साथ भी इन लोगों का संबंध जोड़ा जाता है। भरहुट, बोध गया, सांची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों से संतानार्थिनी स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है। इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियां प्रायः नग्न है, केवल कटिदेश में एक चौड़ी मेखला पहने है। इन वृक्षों में अशोक सर्वाधिकर रहस्यमय है। सुंदरियों के चरण तारण से उसमें दोहाद का संसार होता है। और परवर्ती धर्मग्रंथों में यह भी पता चलता है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करने और अशोक की 8 पंक्तियों के भक्षण से स्त्री की संतान कामना बलवती होती है। अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, सफेद और लाल। सफेद तो तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धिप्रद समझकर व्यवहार होता है और लाल स्मरण वर्धक होता है। इन सारी बातों का रहस्य क्या है? मेरा मन प्राचीन काल के कुंजिका छत्न आकाश से दूर उड़ना चाहता है। हाय, पंख कहाँ है? यह मुझे बहुत प्राचीन युग की बात मालूम होती है। आर्यों का लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है, उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया है। आर्यों से अनेक जातियों का संबंध हुआ, कुछ ने उनकी अधीनता नहीं मानी, कुछ ज्यादा गर्वी ली थी, संघर्ष खूब हुआ, पुराणों में इसके प्रमाण है। यह कितनी पुरानी बात है कि सभी संघर्षकारी शक्तियां बाद में देवयोनि जात मान ली गई। पहला संघर्ष शायद असुरों से हुआ, यह बड़ी गर्वीली जाती थी, आर्यों का प्रभुत्व इसने नहीं माना। फिर दानवों, दैत्यों और राक्षसों से संघर्ष हुआ, गंधर्वों और यक्षों से कोई संघर्ष नहीं हुआ, वे शायद शांतिप्रिय जातियां थी। भरहुट, सांची, मथुरा आदि में प्राप्त यक्षिणी मूर्तियों की गठन और बनावट देखने से स्पष्ट हो जाता है कि ये जातियां पहाड़ी थी। हिमालय का प्रदेश ही गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि है। इनका समाज संभवतः उस स्तर का था जिसे आजकल के पंडित पुनालुवन सोसाइटी कहते हैं, शायद इससे भी अधिक आदिम, परंतु वे नाच गान में कुशल थे। यक्ष तो धनी भी थे और वे लोग बांदरों की भांति कृषिपूर्ण स्थिति में नहीं थे और राक्षसों और असुरों की भांति व्यापार वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं। वे मनियों और रत्नों का संज्ञान जानते थे, पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे और अनायास ही धनी हो जाते। संभवतः इसी कारण उसमें विलासिता की मात्रा अधिक थी। परवर्ती काल में यह बहुत सुखी जाति माने जाने लगी। यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के थे, परंतु आर्थिक स्थिति दोनों की थोड़ी भिन्न थी। किस प्रकार कदर्प देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुसाहिब बनना पड़ा, यह मनोरंजक कथा है। पर यहाँ यह सब पुरानी बातें क्यों रटी जाए? प्रकृति यह है कि बहुत पुराने जमाने में आर्य लोगों को अनेक जातियों से निबटना पड़ता था जो गर्वीली थी, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी। पर्वतीय साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया और सहज ही मित्र बन गई, उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा। असुर, दानव और दैत्य पहली श्रेणी में तथा यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, वानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में आते हैं। परवर्ती हिंदू समाज इनमें सबको बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है, सब में देवता बुद्धि का पोषण करता है। अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा सरल वर्णन मिलता है। असल पूजा अशोक की नहीं वर्ण उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती थी, इसे मनोत्सव भी कहते थे। महाराजा भोज के सरस्वती कंठाभरण से जान पड़ता है यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता था। मालविकाग्निमित्रम और रत्नावली में बड़ा सरस मनोहर वर्णन मिलता है। मैं जब अशोक के लाल अष्टवकों वली में बड़ा सरस को देखता हूँ तब मुझे वह पुराना वातावरण दिखाई पड़ता है। राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने सुनुपुर चरणों के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। कभी कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को भी नियुक्त कर देती थी। कोमल हाथों में अशोक पल्लवों की कोमलातर गुच्छा आया अलकतात से रंजित नूपुरमयी चरणों के मृदु आघात से अशोक का पाददेश आहत हुआ और नीचे हल्की झुनझुन और ऊपर लाल फूलों का उल्लास। किसलयों और कुसुम अष्टभकों की मनोहर छाया के नीचे स्फटिक के आसन पर अपने प्रिय को बैठाकर सुंदरियां अबीर कुमकुम चंदन और पुष्प संभार से पहले कंदर्प देवता की पूजा करती थी और बाद में सुकुमार भंगिमा से पति के चरणों पर बसंत पुष्पों की अंजलि बिखेर देती थी। मैं सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूँ। अशोक के अष्टभकों में यह मादकता आज भी है, पर कौन पूछता है। इन फूलों के साथ मामूली स्मृति जुड़ी हुई है। भारतवर्ष का सुवर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने में उसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक है जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर प्रतिफलित थी। उसके रक्त से संसार गणों में को खाकर बड़ी हुई और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से समृद्ध हुई। वे सामंत उखड़ गए, साम्राज्य ढह गए और मनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। सामंत कामनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। दुनिया अपने रास्ते चली गई। अशोक का फूल पूछे छूट गया। मुझे मानव जाति की दुर्गम निर्गम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौटती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने कई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग की परिणति है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात ही बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अशुद्ध है। शुद्ध है केवल मनुष्य की जिजीविषा, जीने की इच्छा। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। सभ्यता और संस्कृति का मोह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है। धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है, पर इस दुर्गम धारा में सब कुछ बह जाते हैं। जितना कुछ इस जीवन शक्ति को समर्थ बनाता है उतना उसका अंग बन जाता है, बाकी इसके बाहर फेंक दिए जाते हैं। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मदन देवता का गर्व खंडन किया है, धर्मराज और कारागार में क्रांति मचाई है, यमराज की हृदय तारल्य को पी लिया है, विधाता के सर्वकर्तृत्व के अभिमान को चूर किया है। आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जरिमा है, उसमें कितना भाग तुम्हारे कंठ नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा कौन जानता है। मनुष्य की जीवन धारा फिर अपनी मस्तानी चाल से चलती जाएगी। आज अशोक के पुष्प अष्टभकों को देखकर मेरा मन उदास हो गया है। कल ना जाने किस सौहृदय के हृदय के कोने में उदासी की रेखा खेल उठेगी। जिन बातों को मैं अत्यंत मूल्यवान समझ रहा हूँ और उनके प्रचार के लिए चिल्लाकर गला सुखा रहा हूँ, उनमें कितनी जाएंगी, कितनी बह जाएंगी कौन जानता है। मैं कहाँ शोक से उदास हुआ हूँ। माया काटे कत्ती नहीं, उस युग के साहित्य और शिल्प मन को मसले दे रहे हैं। अशोक के फूल ही नहीं, किसलय भी हृदय को कुरेदे जा रहे हैं। कालिदास जैसे महाकवि ने अशोक के पुष्पों को ही नहीं, किसलयों को भी मदमग्ध करने वाला बताया। अवश्य ही शर्त यह भी कि वह दयिता के कानों में झूम रहा हो। किसलय प्रसोपी विलामिनाम मदीता दयिता श्रवणार्पित, परंतु शाखाओं में लंबित वायु ललित किसलयों में भी मादकता है। मेरी नस नस में आज करुण उल्लास की झंझा उत्पित हो रही है। मैं सचमुच उदास हूँ। आज किसे हम बहुमूल्य संपत्ति मान रहे हैं, क्या वह ऐसी ही बनी रहेगी। सम्राटों और सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया था वह लुप्त हो गई। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान वैराग्य को इतना महार्ग समझा था वह समाप्त हो गया। मध्ययुग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रसराशि उमड़ी थी वह वाष्प की भांति उड़ गई। तो क्या यह मध्य के कंकाल में लिखा व्यावसायिक युग का कमल ऐसे ही बना रहेगा। महाकाल के प्रत्येक पदाघात से धरती खिसकेगी, उसके कुंठ नृत्य और प्रत्येक चारिका कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएगी। सब बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन बनेगा। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी की थी। असल में मार मदन का ही नामांतर है। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया, पर ना जाने कब यक्षों के बज्रपानी नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और बोधिसत्व के शिरोमणि बन गए। फिर बज्रयान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ। त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया। वह एक आंधी थी, इसमें बौद्ध बह गए, शैव बह गए, शाक्त बह गए। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने व्याभिचार में सहायता दी, अभिचार में सहायता दी। मैं अचरज से इस योग और भोग के मिलन की लीला को देख रहा हूँ। यह भी क्या जीवन शक्ति का दुर्गम अभिमान है? कौन बताएगा कितने विध्वंस के बाद इस अपूर्व धर्म मत की सृष्टि हुई थी? कौन अशोक अष्टवक का हल फूल और हर दल इस विचित्र परिणति की परंपरा ढोए आ रहा है? कैसा झबड़ा सा गुलम है, मगर उदास होना ही बेकाम ही है। अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ नहीं बदला है। बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति, यदि बदले भी न हो आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती। और यदि वह न बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का संवेग धावन चल निकलता, तो बड़ा बुरा होता, हम पिस जाते। अच्छा ही हुआ जो वह बदल गई, पूरी कहाँ बदली, पर बदल तो नहीं है। अशोक का फूल तो उसी मस्ती से हंस रहा है, पुराने चित्र से इसे देखने वाला उदास होता है, वह अपने को पीड़ित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती। उस अवस्था में उदास भी नहीं रहा जा सकता। कहाँ अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ता, कितनी मस्ती से झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ पर अपने ढंग से। उदास होना बेकार है। समाप्त।